ஓம் சாந்தி. அபி வட்டி மே ஹமாரி பீச் சாந்தி வன் சே கீதா பஹன் ஜி பதா ரே ஹே. ஆப்கா ஹம் பஹத் பஹத் தில் சே ஸ்வாகத் கர்த்தே ஹே. ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே, ஸ்வாகத் ஹே. ऐसे कहेंगे कि आपका नाम ही आपकी पहचान है, आप स्वयं ही दिव्य गुणों की खान है, आपकी जीवन खुली किताब है और आप स्वयं में बेमिसाल हो, बेमिसाल हो. तो ऐसे आज गीता बहन जी का हम अनुभव युक्त क्लास सुनेंगे. गीता का ज्ञान विशेष, उसमें से दो बातें आपके प्रैक्टिकल जीवन में सब अनुभव कर रहे हैं. एक तो कर्म करते जाओ, इच्छा नहीं रखो, तो इच्छा न रखते हुए आगे बढ़ो, कर्म करो. और स्थित प्रज्ञ स्थिति, दोनों ही बातों में, सुख दुखो, जय पराजय, मान अपमान आदि में भी आप स्वयं में शांत चित्त होकर, स्थित प्रज्ञ होकर, अचल और अडोल रहकर सबको प्रेरणा दे रहे हो. आप 1969 से ज्ञान के संपर्क में आए, विद्यार्थी जीवन में विशेष आप अत्यंत मेघावी छात्रा रहे. साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आप हो और बाद में 72 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया. शुरू में गुजरात के सूरत, वहां से ही आप ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े. बाद में भी गुजरात के कई सेवा केंद्र जैसे कि भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद और लास्ट में गुजरात के भावनगर सब जोन के इंचार्ज के रूप में 14 साल आपने अति महत्व की सेवाएं की, कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने. और 93 से जब से ज्ञान सरोवर बना तब से 2010 तक आपने वहां आवास निवास विभाग, रिसेप्शन और साथ में जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ज्ञान सरोवर का आपने बहुत ही सुचारू रूप से, कुशल रीत से सेवाएं देते हुए वहां भी अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान देने के निमित्त बने. बाकी आपकी विशेषता जो ज्ञान है बाबा का, बहुत ही अच्छी तरह मंथन करके स्पष्ट करने की विशेषता है, जिस कारण यहां भी या शुरू से ही हमने देखा है कि आप कई प्रकार के अपने टॉपिक्स है उस पर स्पष्ट आप सोच करके सबके सामने स्पष्टीकरण अच्छी तरह कर रहे हो. बिजनेस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो, कई प्रकार के अलग अलग कैंपेन जिसके आप लीडरशिप करते हुए सेवाएं देते आए. हमारे अलग अलग कोर्सेस है, जैसे मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स है, या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के भी कोर्स है, कई प्रकार के कोर्स है, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरह से कराते हो. देश विदेश की सेवाओं में भी आपने बहुत अच्छी तरह से अपना योगदान प्रदान किया है. आज हमारे बीच शाम का सेशन है तो हमारी जो आज तपस्या चल रही है तो उसका फाउंडेशन आत्मानुभूति, ऐसे ही आपने इस पर बहुत अच्छी तरह से हम सबके सामने जो भी अनुभव किया है आपने उसके आधार से स्पष्ट करेंगे और उसी आधार से बाद में कमेंट्री से आप योग भी कराएंगे। तो सब बड़ी एकाग्रता से आपकी बातें सुनते हुए पूर्ण अनुभूति में खो जाएंगे। तो मैं निकिता बेन से नम्र निवेदन करती हूँ कि अपना इस विषय पर स्पष्टीकरण करें। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन की पावन भूमि में तपस्या के लिए आप सभी आए हैं। मधुबन है ही तपोभूमि। महातपस्विनी आत्माओं ने, चाहे बाबा मम्मा दादियां, बड़े भाई बहने, सबने यहां तपस्या की। हमारी तपस्या क्या है? क्या तपस्या हमें करनी? भक्ति में तो देह दमन की तपस्या करते, हमारी तपस्या कौन सी है? देह भान से न्यारा होना और अपने ओरिजिनल शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होना। एक निराकार परमात्मा पिता की याद में एकाग्र होना। क्यों ये साधना जरूरी है? जैसा बाबा ने हम बच्चों को बताया है, कि ये समय है फिर से पूरा साइकिल अपनी ओरिजिनल स्टेज में पहुंच रहा है। आत्माएं भी अपनी ओरिजिनल स्टेज पर पहुंचेगी और प्रकृति भी फॉलो कर अपनी सतो प्रधान स्टेज में पहुंचेगी। दूसरा ये भी बाबा ने हम बच्चों को बताया है और हम सबने भी विवेक से इस बात को समझा है कि देह अभिमान के कारण ही सभी विकार उत्पन्न होते हैं। माया की उत्पत्ति ही देहाभिमान के कारण होती है और विषय विकार ही दुख और शांति के मूल कारण है। इसलिए अगर स्वयं को पूर्ण सुख शांति अनुभव करनी है तो ये जरूरी है संपूर्ण आत्मभिमानी बनना। भक्ति में भी इस बात को तो वो समझ गए थे कि इंद्रिय रसों के कारण ही मन भटकता है, साधना का जो लक्ष्य है वो आत्म शुद्धि और परमात्मा प्राप्ति है, इसी के लिए साधना करते। एक तो आत्म शुद्धि, और परमात्मा की प्राप्ति। हमें परमात्मा मिल चुके हैं, हम परमात्मा प्राप्ति के लिए योग तपस्या नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें तो बाबा मिल चुके हैं, हमें तो परमात्मा ने ही योग सिखाया है, है ना। उनकी सारी तपस्या की मेहनत परमात्मा प्राप्ति के लिए। और उस विषय में हमें कोई मेहनत नहीं करना, ये कितने बड़े भाग्य की बात है कि स्वयं भगवान ने हर सत्य का हमें ज्ञान दिया है। हमें सत्य खोजना नहीं, इतनी साधना और भक्ति के बाद भी वो सत्य तो पा ही नहीं सके। हमें तो बाबा ने सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान दे दिया। हमारा पुरुषार्थ है, हमारा अभ्यास है, उसको आप साधना कहो तपस्या कहो, वो है बाबा के सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से संपूर्ण पावन बनना, पूरा सतो प्रधान बनना। और परमात्मा से पूर्ण प्राप्ति करना, परमात्मा हमें प्राप्त हो चुका है पर हमें उनसे, चाहे उनका ज्ञान है, गुण है, शक्तियां हैं, स्थिति है, वो पूर्ण प्राप्ति हमें करनी है। हम भक्त आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बने और ज्ञानी तो आत्मा से हम योगी आत्मा हैं। निरंतर आत्मभिमानी बने, सतो प्रधान स्टेज, सतयुगी स्टेज क्या है? बाबा कहते हैं ना, वहां तुम नेचुरल आत्मभिमानी होंगे, नेचुरल आत्मभिमानी, और उसके कारण माया जीत भी, कर्मेंद्रिय जीत भी, प्रकृति जीत, काल जीत, जगत जीत। वो स्टेज अभी हमें बना ले, स्थिति यहां बनानी है ना। संगम युग की जो हमारी लास्ट स्टेज होगी, उसी स्टेज से सतयुग को हम आरंभ करेंगे। संगम की लास्ट स्टेज वो हमारी सतयुग की प्रथम स्टेज। और इसलिए हम सब ने योगी जीवन पद्धति अपनाई, भोगी से योगी बने हैं। और जब तक हम संपूर्ण बने, बाबा कहते हैं ना, अंत तक हमें ये पुरुषार्थ करते रहना है। इवन बाबा को भी हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम संपूर्ण आत्मभिमानी बने, निराकार की याद से ही संपूर्ण आत्मभिमानी बन सकते। देहधारी देवात्मा है, महात्मा है, धर्मात्मा है, या कोई भी मनुष्य आत्मा है, पर देहधारी की याद देहाभिमान में लाने वाली, भल वो देवात्मा हो, महात्मा हो, धर्मात्मा, केवल निराकार की याद ही हमें निराकारी बना। बाबा ने तपस्या की सिंपल व्याख्या हमें दी। रोज बाबा रिवाइज करते, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। सिंपल बात है, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, अधूरा ज्ञान कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए बाबा कहते हैं सहज मार्ग, सहज योग, और वही हमारा मुख्य पुरुषार्थ। इसलिए हम बार बार देहभान से न्यारे होकर आत्मस्मृति में रहने का पुरुषार्थ करते। भल आत्मा का ज्ञान प्रथम दिन में ही प्राप्त हो गए और वो समझ में आ गया, तभी जीवन परिवर्तन शुरू हो गया। पर प्रैक्टिकल आत्मभिमानी बनने के लिए अभ्यास चाहिए, है ना? केवल ज्ञान से हम नहीं बन जाएंगे ना, अभ्यास चाहिए, क्योंकि आत्मा को अनेक जन्मों से देहभान में रहने का अभ्यास। देखो कितने लंबे समय से बाबा हमें अभ्यास करा रहे हैं। और उसके बावजूद भी है ना, रिजल्ट अपने आप का हम देखें, क्योंकि ये पाठ पक्का ना होने के कारण ही हम देह से भी अटैच होते हैं, देहधारियों से भी अटैच होते हैं, वैभव पदार्थ से अटैच होते हैं और इस दुनिया से अटैच होते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में जब भी कोई शरीर छोड़ते हैं उस समय ये पाठ याद तो आता है हर एक को, है ना, कि अकेले आए हैं, अकेले जाना है, आज नहीं कल हर किसी को जाना है, है ना, ये बात याद आती रही है। पर हम आत्मभिमानी नहीं बन पाए, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं था। बाबा रोज यही बात हम बच्चों को पक्का करा कि तुम देह से अलग हो, सिर्फ मैं आत्मा हूं इतना नहीं, पर मैं आत्मा देह से अलग हूं, ये बार बार महसूस। उनको ये सत्य पता नहीं था भक्ति में, इसलिए साधना करने के लिए वे दुनिया से दूर हुए, दुनिया से दूर जंगलों में चले गए। देहभान मिटाने के लिए उन्होंने देह को कष्ट दिया, इंद्रियों का दमन किया, आंखें बंद कर ली, मौन कर लिया, उपवास कर लिया, क्योंकि इंद्रिय रस के वश आत्मा भटकती, मन से भटकते ना, क्योंकि वो रस इच्छाओं में ले जाता है। तो तो वो इंद्रियों को कष्ट देते। बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थ बताया कि दुनिया से दूर जाने की जरूरत नहीं, कर्मेंद्रियों को कष्ट देने की जरूरत नहीं, खुद को आत्मा समझने की आवश्यकता। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते मन ही मन ये अवेयरनेस हम रखते हैं कि मैं आत्मा हूं। प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक बाबा के बच्चे हैं। बाबा मुरली में भी बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा खुद भी कितना अभ्यास करते। बाबा की हिस्ट्री पढ़ी है ना, कि बाबा लिखते थे मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है ना, अपनी लौकिक युगल के लिए भी बाबा लिखते थे। राधे आत्मा है, राधिका आत्मा है, बाबा की पुत्र वधु। नारायण आत्मा है, बाबा का बेटा। बाबा ने ये पाठ पक्का किया। स्मृति बदले बिगर वृत्ति और स्थिति नहीं बदल सकती। तो बाबा रोज यथार्थ स्मृति हर बात की दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। तो हमें भी ये अभ्यास करना चाहिए। अपनी डायरी में लिखो मैं आत्मा हूं। जो भी इस जन्म के संबंध है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये पाठ पक्का करना महसूसता के साथ। भक्ति में महसूसता खत्म हो गई धीरे धीरे, रिपीटेशन हो गए। ये रिपीटेशन नहीं, रिवाइज करना, रियलाइजेशन के साथ रिवाइज करना। रोज दुनिया में लाखों हैं, पर हम किससे जुड़े हुए हैं? बॉडी कॉन्शियस तो वहां होते हैं ना? तो जो इस जन्म के मित्र संबंधी हैं, क्लोज है ना, वहां पाठ पक्का करना है। क्योंकि स्मृति से अनुभूति की ओर हम जाते। जो मुझे अनुभव करना है वो बार बार स्मृति में लाना है। तो देखो बाबा मुरली में भी बताते हैं ना कि बाबा इस मुख से बोलते हैं, तुम बच्चे कानों से सुनते हैं। बाबा खुद ये पाठ पक्का कर, फिर आत्मदृष्टि, खुद हर कर्मेंद्रिय से अलग ये कर्म करते स्मृति में रहना या आत्मस्मृति। औरों को देखते हैं, बाबा कहते हैं भ्रुकुटी में देखो, आंखें नाक चेहरा वैरायटी है, पर ये तो सबका फ्लैट एरिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं यहां देखो और नहीं, नहीं तो भाई इनकी आंख टेढ़ी है, नाक लंबा है, कान ऐसे, तो ये वैरायटी है, तो बाबा कहते हैं यहां देखो ब्रकुटी में भी। रूहानी दृष्टि, और जो भी कर्म करें आत्म धर्म में स्थित होके करें। हमारा आत्म धर्म कौन सा है? शांति और पवित्रता, जो हमारे ओरिजिनल गुण है, वो हमारे असली गुण धर्म है। माना मेरा लक्ष्य रहे कि मुझे हर कर्म शांति से, शुद्धि से, सोच समझ कर ज्ञान स्वरूप बनकर कर। कोई भी कर्म शुरू करते हैं तो एक क्षण अंदर खुद को ये पाठ पक्का करें, इसलिए बाबा ने पहला अभ्यास डिटैचमेंट का सिखाया। डिटैचमेंट चाहिए, योगी जीवन की पहली शर्त डिटैचमेंट है। क्योंकि हमारा बुद्धि योग कहीं न कहीं अटैच तो है ही है। अब बाबा से योग लगाना है तो यहां से डिटैच होना चाहिए। तो खुद से ही न्यारापन, देह से न्यारापन, और ये आपका अपना भी अनुभव होगा कि देहभान से डिटैच होने से अपने आप सबसे साक्षी बन सके। ये इतना पावरफुल अभ्यास है कि हम देह से अलग आत्मभान में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिक ड्रामा के हर सीन में हम साक्षी रहते हैं। और जितना आप न्यारे हैं, साक्षी है देहभान से अलग आत्मभान में रहते हैं, तो आपका अनुभव होगा कि कोई भी परिस्थिति का, व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आपकी स्थिति पर असर नहीं आएगा उसका, नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं आएगा। जितना हम इन्वॉल्व है उतना असर आता है। हम जितना दूसरों मई हो जाते हैं ना, परिचय, संबंध, स्नेह, अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट, फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप उसके बारे में सोचने लगेंगे, उनके हर ऊपर नीचाई का आपके ऊपर प्रभाव आएगा। तो हम एकरस नहीं हो सकते। देखो, जब आप बहुत अच्छा क्वालिटी योग अभ्यास करते हैं, बहुत प्यार से एकाग्र होकर बाबा की याद में बैठते हैं, उसके बाद आपका अनुभव होगा कि घंटे तक आपको ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, बातों के विस्तार में जाना अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ भी समाचार सुनाएगा ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। है अनुभव, है ना? आपको अपनी अंदर के आनंद में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि डिटैच हुए ना आप, आत्मभिमानी बहुत अच्छी तरह बने और बाबा की याद से ऊपर उठे, एक ऊंची स्टेज पर गए, तो फिर ये बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। पर वो हमारा निरंतर बनना चाहिए, ज्यादा टाइम बनना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, सेफ्टी की स्टेज, क्योंकि इससे दूसरे के वाइब्रेशंस प्रभाव नहीं डालेंगे। देखो, जितने लोगों से आप दिन भर मिलते हैं, 5, 10, 50, 15, 25 लोगों से मिलना तो हो जाता है ना, आते जाते, आप मार्केट में जाओ तो कितने सामने आते हैं। अब हर कोई अपने वाइब्रेशन के साथ आ रहा है, कोई जल्दबाजी में है, कोई टेंशन में है, कोई गुस्से में, कोई चिंता में है, कोई कंफ्यूजन में, हर एक की मनोस्थिति आप देखिए। और बाबा कहते हैं ना कि मुझे किसी के मन में क्या चल रहा है जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ सकते हैं ना कि कलयुग की आत्मा क्या सोचती है ना, तमो प्रधान आत्मा के मन में क्या होगा, समझ सकते हैं ना, चिंता, भय, है ना, टेंशन, अशांति, कंफ्यूजन, दुख, नाराजगी, उदासी, कुछ भी। अब हरेक के वाइब्रेशंस हमारी मनोस्थिति से टकराते हैं ना, पर जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा डिटैच, देहबान से न्यारे हैं, तो वो वाइब्रेशन समय प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। और ये भी हमने देखा कि आत्माभिमानी स्थिति की साधना कच्ची है क्योंकि ये फाउंडेशन की साधना है, उसके बाद साधना की ऊंचाई बढ़ती है, पर ये फाउंडेशन है। अगर ये कच्ची है तो दृष्टि वृत्ति नहीं बदलती, बल ज्ञान में चलते हैं, रोज क्लास में आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर फाउंडेशन कच्चा है, आत्मभिमानी स्थिति का अभ्यास कच्चा है, तो हमारे संस्कार और दृष्टि वृत्ति नहीं बदलते। फिर वो पुराने संस्कार बार बार जागते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बाप को नहीं भूलते हो, अपने आप को ही भूल जाते। बेसिक रीजन ये है कि हम अपने आत्मभान गंवाते हैं, देहभान में आते हैं, तब हम बाबा से डिस्कनेक्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने देखो इस साधना का कितना महत्व समझा कि कष्ट भी सहा है ना, इंद्रिय दमन किया, उसका कारण ही है क्योंकि तभी अंतर्मुखी बनेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग की पहली बात ही स्वयं की स्थिति से शुरू होती है ना, साधना शुरू ही होती है अंतर्मुखता है ना, आप खुद के प्रति जाते हैं। योग मीन्स जब बाहर थे हम, बाहर मुखी थे, वहां से डिटैच होके हम अपने अंदर भीतर जाते हैं, खुद की स्थिति की ओर जाते हैं। क्यों बाबा ने अन्न शुद्ध की धारणा कराई, क्यों ब्रह्मचर्य को महत्व दिया, क्योंकि हमारा पहला पाठ ही देह भान को भूलना है। अब जो देह को भोगेगा वो तो बॉडी कॉन्शियस बनेगा, हमारी पहली साधना से ही विपरीत हो गए। इसलिए बाबा कहता है कि जो काम वासना के वश होते हैं वे पहला ही पाठ नहीं पढ़ सकते, वो आत्मभिमानी नहीं बन सकते। अपवित्र दृष्टि वृत्ति योग को ही भ्रष्ट करते। आप देखो व्यक्ति ज्ञान भी सुनाएगा, सेवा भी करेगा, पर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है, उनका योग नहीं लगेगा। इसलिए वो इफेक्ट आंतरिक आती है, जो खुद गहराई से ज्ञान समझेगा वो महसूस करे। इसलिए देह से अलग, और वैरायटी रूप से ये अभ्यास हम करते रहे कि कैसे हम इससे अलग है। शुरू में दादियां बताती है ना कि बाबा घंटों हमें ये अभ्यास कराते। मैं शुद्ध आत्मा हूं, कहते हम उस नशे में घंटों बैठे रहते। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता था शुरू में कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसमें नशे की क्या बात है। हमें ऐसे विचार चलते थे और ये घंटों इसमें कैसे बैठते हूं। पर अब सालों के अभ्यास के बाद जितना मैं आत्मा शुद्ध बनती जाती हूं, परसेंटेज तो बढ़ते हैं ना दिन प्रतिदिन, है ना। ज्ञान के पहले साल में, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, है ना, हमारी आत्मा शुद्धि में परसेंटेज तो बढ़ती है ना। अब अनुभव होता है कि कैसे अपनी शुद्ध स्थिति में आनंद आता है। इसलिए कहते हैं ना निजानंद, निजानंद, आत्मानंद, स्वरूपानंद, है ना। भक्ति में कितने शब्द है। हमें सेवा के आनंद का अनुभव है ना, पर वो भी स्थूल कहेंगे ना। हम आपस में मिलते हैं तो भी आनंद होता है, फिर भी वो बाहर मुक्ताई है ना, फिर भी वो व्यक्ति व्यक्त है ना। अपने स्वरूप में आनंद, हम कहते हैं ना मैं आत्मा आनंद स्वरूप, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है। वो आत्माभिमानी स्थिति में कितना आनंद का अनुभव करते हैं। वो चेक कर, वो देखो, मुझे अपने आप में आनंद है, मेरा अपना शुद्ध दिव्य पवित्र शांत स्वरूप, मुझे उसमें कितना आनंद है। फिर आप अकेले भी बैठे होंगे ना, कुछ भी नहीं करते होंगे तो भी आपको अपने आप में आनंद आएगा। आज दुनिया में दो बातों से हर कोई अनुभव कर रहा है, दुखी हो रहा है या महसूस कर रहा है। एक अकेलापन, अकेलापन लगता है सबको जीवन में, मेरा कोई नहीं। कहने के लिए बहुत मित्र संबंधी है पर मेरा कोई नहीं, तो अकेलापन महसूस करते। और दूसरा खालीपन, मेरे में कोई ताकत नहीं है, ऐसे अनुभव करते, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती, इतना खालीपन महसूस। जबकि जीवन साधनों से भर रहा है। हकीकत तो ये है, पहले कम साधन से, अभी तो सब सुविधाओं से जीवन भर रहा है और इंसान से संसार भर रहा है ना? और रिजल्ट क्या है? अकेलापन, खालीपन, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल स्वरूप से ही कनेक्ट नहीं, जो रियलिटी है। सत्य क्या है? मैं आत्मा सत्य हूं। शरीर तो झूठा है, परिवर्तनशील है, नाश्वंत है। आज ही बाबा ने कहा ना, सत्माना अविनाशी और सत्माना सत्य। मैं सत्य हूं, मैं शक्ति हूं, मैं आत्मा अविनाशी हूं। हम अपने ओरिजिनल स्वरूप से कनेक्ट होते हैं तो एनर्जी आती है, अपने आप पर कंट्रोल आता है। तो हमें खुद में आनंद, कोई नई भी है ना तो भी आपको खुद में ही आनंद आएगा। कोई बात करने वाला चाहिए ऐसा आपको नहीं लगेगा, आपका मन ढूंढेगा नहीं किसको, है ना? वरना कोई काम नहीं है, इंसान फ्री है पर खोजता रहेगा कोई आवे, कोई मिले, बात करे, क्योंकि अपने आप में स्थित रहे। तो ये अनुभव करना कि अपने आप में ही आनंद है, सुख है, फिर आपको बात करने का भी मन नहीं होगा। माना बिना साधन केवल खुद के अस्तित्व में ही आनंद आएगा, ये अनुभव करना। और जितना अपने आपके प्रति फोकस होंगे, है ना, क्योंकि खुद के बारे में सोचेंगे तो खुद के प्रति फोकस होते जाएंगे, खुद ही एनर्जाइज होंगे, खुद में ही शक्ति अनुभव होगी। इसलिए बाबा कहते ना, तुम्हारे अपने चिंतन से ही तुम्हारे में शक्ति आती। फिर है बाबा की याद, वो हमें और परफेक्शन लाता है, परिपूर्णता लाता है। परिवन हमारे अपने स्वरूप में भी बहुत पावर है, तो योग कहे, साधना कहे, तपस्या कहे, उसका पहला कदम ही स्वस्थिति। ये पाठ हमें बहुत पक्का कर। अपने आप तत्वों से अलग, पदार्थों से अलग, फिर बाबा से हम अपने आप को जोड़ते, तो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान का आनंद भी हम अनुभव करते, पर ये है स्थिति का आनंद, अपने स्वरूप का आनंद। और अल्टीमेट वही प्राप्त करना है ना। बाबा कहते हैं ना, आत्मा साथ क्या ले जाएगी, स्थिति ले जाएगी, अवस्था लेके जाएंगे। नॉलेज तो प्रायः लोप हो जाएगा, है ना, ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाएगा ना, पर उसका रिजल्ट, वो स्थिति हमारी साथ चलेगी। इसलिए टाइम निकाल के आप सभी यहां आए हैं, और ये मौका है, क्योंकि सेंटर में तो घर से आते हैं, क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, है ना, घर काम है, नौकरी है, धंधा है, तो तुरंत भागते हैं, हम गौर नहीं कर पाते हैं। तो ये बीच बीच में क्यों भट्टियां रखते हैं, और विशेष मधुबन में ये मौका है, तो अकेले बैठकर, है ना, शांति से एकांत में बैठकर अपने आप को चेक कर, स्व निरीक्षण, स्व निरीक्षण। ज्ञान मिल चुका है, अब सारा मदार हमारे पुरुषार्थ पर है। परसों ही 2-3 दिन में ही बाबा ने बताया ना, मैं ना सुख देता हूं ना दुख देता हूं, मैं तो सुख का रास्ता बताता हूं। तो बाबा ने हमें सत्य बता दिया। अब साइलेंस में बैठकर, अंतर्मुखी होकर हमें खुद निर्णय करना है कि मुझे अपनी क्या स्थिति बनानी। पहला पाठ ही मेरा कहां तक पक्का है, और उसमें मुझे कितना सुख अनुभव होता है। ज्ञान में हम चल रहे हैं, रोज पुरुषार्थ कर रहे, नियम धारणाओं में भी चल रहे हैं, ये सत्य ज्ञान की शक्ति है जिसको हमने महसूस किया है। पर सभी बातों से फारिग होकर हम साइलेंस में भट्टी में बैठकर खुद को चेक करते हैं कि लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं ना, चल तो रहे हैं ज्ञान में, योग में, पुरुषार्थ में, पर मंजिल की दिशा में चल रहे हैं ना, और मेन अचीवमेंट आत्माभिमानी स्थिति, बाबा से जिगरी प्यार, उसमें एकाग्रता, ये हमने कहां तक प्राप्त किया। बाकी सेवा तो बाबा ने समय, शक्ति, धन सफल करने के लिए दी है। दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो खुद का भी पाठ पक्का होगा, पर मुख्य चीज मैं सुस्ता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, है ना, वो मेरी कहां तक आई? तो हम सब मिलकर कुछ क्षणों के लिए अभ्यास करेंगे, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, हाथ पांव स्ट्रेच कर लीजिए, दो तीन अभ्यास खड़े होकर करेंगे, तबीयत अनुसार जब जो बैठना चाहे बैठ जाए, जो खड़े होके कर सकते हैं वो करें। पहला अभ्यास, स्वयं में खो जाइए, मस्त हो जाइए। स्वयं के अलौकिक दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाए। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं, शरीर तत्व है, मिट्टी है, मैं आत्मा दिव्य ज्योति अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। स्वयं के प्रति केंद्रित हो जाइए, मैं आत्मा ही जीवन का सार है, शरीर और संसार हलचल है, परिवर्तनशील है, मैं स्वयं अचल स्थिर। धीरे से राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास बाबा में मगन हो जाना है। मुझ आत्मा का असली अविनाशी सहारा एक बाबा। संबंध परिवर्तनशील है। मैं आत्मा मूल रूप से बाबा की हूँ। वही मेरा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। बाबा ही मेरा साथी और जीवन सारथी। वो ही मेरा शिक्षक, वो ही मेरा रक्षक। अब मुझे बुद्धि से कहीं और भटकना नहीं है। कुछ भी खोजना नहीं है। मेरे सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां बाबा लेफ्ट साइड घूम जाएं, बाबा के सामने हो जाएं। तीसरा अभ्यास और लेफ्ट साइड घूम जाएं। इस वर्ल्ड ड्रामा में इस अंतिम जन्म में जो भी रोल्स मिले हैं हर पार्ट हर रोल ट्रस्टी बनकर निभाना है। बाबा मालिक का है, मैं आत्मा निमित्त हूँ। स्वयं के पार्ट में ट्रस्टी निमित्त अन्य के पार्ट को साक्षी होकर देखना और शुभ भावनाओं से सकारात्मक संकल्पों से श्रेष्ठ व्यवहार से सहयोग देना न्यारा और प्यार राइट साइड घूम जाए बैठ जाए चौथा अभ्यास शरीर से इस दुनिया में रहना मन बुद्धि से असली घर में रहना। मन की आंख से मूल वतन को देखना। वापस घर जाना है। सभी आत्माओं को भी ले जाना है। असली घर में असली स्थिति में असली बाबा के पास मन और बुद्धि से इस दुनिया से लंगर उठा लेना। निज धाम के प्रति निज स्वरूप के प्रति वापस स्थित हो जाना। ओरिजिनली मैं शांत और शुद्ध आत्मा लाइट हूँ, एक माइट पांचवा अभ्यास वर्तमान शेष जीवन में Master Data Ban. हर आत्मा को प्रकृति को देना प्यारे बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, हमें भरपूर किया है, ये लौकिक खजाना बांटना है, शांति के सागर, शांति दाता की संतान, हम शांति दूत आत्माएं हमें अपने अस्तित्व से उपस्थिति से दृष्टि से विचार वाइब्रेशन से वाणी और व्यवहार से सर्वत्र शांति फैलाने हैं, सुख के सागर दुख हरता सुख करता बाबा के हम बच्चे, सुख देव बनना, सुख देना है, देना ही लेना है, अब अब मैं अपने हिसाब से इस दुनिया में नहीं हूँ। अब मैं बाबा की प्रतिनिधि हूँ। प्यार के सागर बाबा के हम बच्चे प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। हर आत्मा को रूहानी प्यार देना है।
ओम शांति। सब अपने में खो गए होंगे और स्वरूप चिंतन का आनंद लेते हुए बाबा के पास पहुंच गए होंगे। अनुभव के आधार से, अपनी स्थिति के आधार से गीता बहन ने बहुत अच्छी तरह से आत्मानुभूति, जो फाउंडेशन है तपस्या का, वो बहुत अच्छी तरह समझाया। अभी समझने के बाद कुछ अनुभव भी कराया। बहुत बहुत हम आपका दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं, एक हाथ की ताली से। बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स है। आप समझ सकते, आप दो तीन दिन के लिए यहाँ आते हैं और वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होकर जो वहां स्थिति नहीं बन सकती वो यहाँ जल्दी बन जाती है। और बनाने वाले की बात सोचो, जो सदा यहाँ रहते, इसी ज्ञान की बातों में रमण करते, सुनते सुनाते रहते और पुरुषार्थ करते रहते, उन्हों के निरंतर स्थिति से औरों को बहुत बहुत लाभ देते रहते हैं। तो फिर हम गीता बहन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अर्पित करते हैं।